ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते समय अराजकता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन के लिए 21 अरब 23 करोड़ सहूलियत ऋण तथा अनुदान नेपाल को मुहैया कराएगा एशियाई विकास बैंक। सामुदायिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की पार्टी संबद्धता को समाप्त करने का शिक्षाविदों का सुझाव। और अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का दिया फंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सूचना के हक के उपयोग करते समय अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि असंबंधित व्यक्ति अनेक सूचना मांगकर सरकार के काम को बिगाड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संविधान में निर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन और उपयोग के लिए आयोग की भूमिका प्रभावी होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष राष्ट्रीय सूचना आयोग के नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डॉ सुरेश प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसी तरह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रमुख आयुक्त आचार्य ने नवनियुक्त आयुक्त गगन विष्ट और दुर्गा भंडारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आज तेरथुम के आठराय स्थित प्रणामी माध्यमिक विद्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने की कला विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ओली ने स्कूल भवन के निर्माण में सहायता करने वाले दक्षिण कोरियाई संगठन योंग होंग गिल फाउंडेशन और निर्माण में सहायता करने वाले अन्य दलों को धन्यवाद दिया। अर्थमंत्री बिष्णु प्रसाद पौड़े ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए धीरे धीरे पहल की जा रही है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अर्थ समिति में आज हुई चर्चा में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री पौड़े ने कहा कि जवाब और समस्याओं से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पहल की जा रही है और समग्र आर्थिक स्थिति के कुछ संकेत अच्छे हैं और शेयर बाजार में भी तेजी है। अर्थमंत्री पौड़े ने कहा कि सरकार राजस्व रिसाव को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन सभी प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। बैठक में सांसदों ने सुझाव दिया कि राजस्व छूट को उचित और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सीमा शुल्क मूल्य लेनदेन मूल्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए और सीमा शुल्क कार्यालय को आधुनिक और प्रविधि के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। नेपाल सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच यांत्रिक सिंचाई नव प्रवर्तन परियोजना और जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना क्रियान्वयन के लिए 21 अरब 23 करोड़ यानी 157 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए सहूलियत ऋण तथा अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जानकारी अर्थ मंत्रालय ने दी। अर्थ मंत्रालय में आज हुए समझौते के मुताबिक एडीबी इस परियोजना के लिए 14 अरब 88 करोड़ रुपए का कर्ज और 2 अरब रुपए अनुदान देगा। इसी तरह जलवायु उत्थान एवं आजीविका परियोजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए का ऋण और 2 अरब 97 करोड़ रुपए का अनुदान समझौता हुआ है। समझौते पर अर्थ सचिव डॉ रामप्रसाद घिमिरे और एडीबी के कंट्री निर्देशक अर्णो कोशवा ने हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के रौतहड़ और सरलाही जिलों में लागू होने वाली यांत्रिक सिंचाई परियोजना के तहत उन्नत सिंचाई तकनीक लागू की जाएगी। इसी तरह करनाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों के ग्रामीण समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के उद्देश्य से जलवायु उत्थान और आजीविका परियोजना संचालित की जाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा है कि एक ऐसी जनसंख्या नीति आवश्यक है जिसमें सब कुछ शामिल हो। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री पौड़ेल ने कहा कि जनसंख्या नीति देश के निर्माण का आधार है, इसलिए जनसंख्या नीति में सभी चीजों को शामिल करना जरूरी है। ये उल्लेख करते हुए कि सरकार ने जनसंख्या नीति को प्राथमिकता नहीं दी है, मंत्री पौड़ेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में जनसंख्या विभागों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने के लिए विशेष पहल करनी चाहिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा है कि रोजगार का मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र है। आज काठमांडू में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भैसीपाटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री भंडारी ने बताया कि मंत्रालय के तहत एक आंतरिक रोजगार प्रभाग स्थापित किया जाएगा। मंत्री भंडारी ने कहा कि देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रभाग की स्थापना की जाएगी। शिक्षाविदों ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक स्कूल के शिक्षकों को पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाना चाहिए। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी समिति में विद्यालय शिक्षा विधेयक के ऊपर सुझाव लेने विशेषज्ञों के साथ आज की बैठक में शिक्षाविद डॉ केदार भक्त माधेमा ने कहा कि राजनीतिक संबद्धता के कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हो गई है, भले ही राज्य वेतन, भत्ते और पेंशन, पब्लिक स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। सहकारी पीड़ितों और सहकारी बचतकर्ताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक नोटिस सौंपकर बचत वापस करने की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा बहादुर मगर को सौंपे गए ध्यानाकर्षण पत्र में कहा गया है कि सरकार ने बचतकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है। ज्ञापन को समझने के बाद आयोग के अध्यक्ष मगर ने कहा कि आयोग में सहकारी की रकम दुरुपयोग और बचत राशि वापस न करने के संबंध में दर्ज शिकायतों की जांच की जा रही है और चर्चा के बाद निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का फंड दिया है। इस फंड को अमेरिका ने रूस की जब्त की गई संपत्ति से लिया है। यह आर्थिक मदद 50 अरब डॉलर पैकेज का एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा G7 समूह के सदस्य देशों ने जून में की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को ये मदद ऐसे समय पर की है जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही कहा है कि वो कार्यभार संभालते ही रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को अमेरिकी संसाधनों पर बोझ बताया था। ट्रंप के इस बयान के बाद ये संदेह पैदा हो गया था कि नए राष्ट्रपति के प्रशासन में भी क्या यूक्रेन को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते समय अराजकता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन के लिए 21 अरब 23 करोड़ सहूलियत ऋण का अनुदान नेपाल को मुहैया कराएगा एशियाई विकास बैंक। सामुदायिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की पार्टी संबद्धता को समाप्त करने का शिक्षाविदों का सुझाव। और अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का दिया फंड। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।